المظلومين لا سيما بقية الله وحجة الله مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر الأهدي منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحمد لله. परवरदिगार आलम ने एक बार फिर जो है एक साल के बाद आप मोमिनीन से मुलाकात की तौफीक दी और अय्याम अरबईन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, और ये यकीनन एक सआदत भी है और अलैकुम सलाम इबादत भी है। गुज़श्ता साल हमने कुछ चीज़ें अर्ज़ किया था अरबईन से रिलेटेड थी, उसमें 11वें इमाम की एक हदीस हमने कोट की थी कि जिसमें मोमिन की जो पहचान और अलामत हैं उनमें से एक अलामत को ज़ियारत अरबईन करार दिया था कि अलामतुल मोमिन खमसा, और उसके बाद फरमाया था ज़ियारतु यौमिल अरबईन, अरबईन के दिन जो है ज़ियारत पढ़ना। और हमारे पास 14 मासूमीन हैं और 14 मासूमीन में से तकरीबन सारे मासूमीन शहादत पा चुके हैं। हत्ता हुजूर पाक के बारे में भी है कि जंग खंदक के बाद किसी खातून ने जो अहले किताब थी उसने कोई गोश्त खिलाया था हुजूर पाक को, और वो जहर था उसमें एक स्लो पॉइजन था, और ख़ुद हुजूर पाक से मशहूर जुमला है कि वो मुझे आस्ता आस्ता अंदर से मेरे जिस्म को खा रहा है। तो लेकिन किसी भी इमाम मासूम के अरबईन की कोई ज़ियारत नहीं आई हमारे पास है। इमाम की ज़ियारत है लेकिन ऐसा है कि इमाम की शहादत के 40 दिन बाद की ज़ियारत मसलन कोई नहीं है। अगर है ज़ियारत तो सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शहीदों की ज़ियारत है, इसके अलावा किसी इमाम की कोई, हत्ता 40वां मनाने के बारे में भी कोई ऐसी हदीसें नहीं है कि हतमन हर इमाम की अब 40वां मनाना है आपने, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 40वां के बारे में भी है, क्योंकि खुद जो 40 है वो इस्लामी रिवायात के अंदर एक बड़ी पोजीशन रखता है। कुरान मजीद के अंदर भी इसका तज़किरा मौजूद है और अहादीस के अंदर भी है कि इंसान के बहुत सारी जो चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर वो 40 के बाद जो है काफ़ी उसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं। मसलन कहते हैं कि इंसान की मेच्योरिटी पीक पे चली जाती है आफ्टर 14, 40 के बाद पीक पे चली जाती है, या अगर 40 दिन तक अगर कोई मुखलिसन इलल्लाह रहता है खुदा की बारगाह में मुखलिसाना इबादत करता है तो खुदा फरमाता है कि मैं उसके सामने आंखों से पर्दे हटा दूंगा और उसके अंदर मारिफत के एक अजीब व गरीब सैलाब आ जाएगा उसके अंदर मारिफत का। तो 40 के बारे में, या फरमाया कि अगर फला ये बुरा अमल किसी ने अंजाम दिया तो 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती वगैरह वगैरह, 40 दिन तक फरिश्ते नहीं आते अगर फला मसल फर्ज करें खुदा न करदा शराब अगर कोई पी लेता है या फला कोई बुरा गुनाह करता है। तो ये 40 बड़ा एक इसकी अपनी एक जो है ना कुछ खास पोजीशन है हमारी रिवायात के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 के इसी उसको पेश नजर रखकर आप लोग हर साल ये अशरे का एहतमाम कर रहे हैं, और इस सार टॉपिक भी आपने मुझे दिया है वो दर हकीकत मैं अब उस लफ्ज का, क्योंकि मुनासिब उर्दू तर्जुमा अभी तक हमारे पास नहीं आया तो मैं सेम उसी वर्ड्स को मैं यूज करता हूँ, सेक्युलरिज्म और मजहब को लेकर है, जो कि आज की हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक वाकन सीरियस किस्म का एक मसला और चैलेंज के तौर पर है। हम इस टॉपिक के अंदर बराह रास्त इंटर होने से पहले मैं अर्ज कर दूं, मैं इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशंस बना चुका था, इवरी मजलिस की प्रेजेंटेशन मेरे पास है, लेकिन क्योंकि यहाँ अभी जिस तरह माशाल्लाह आप लोग चीजें अरेंज कर पाए हैं और पॉसिबिलिटीज जिस तरह हैं उसी के हिसाब से वो प्रेजेंटेशन तो रही, लेकिन वो पीडीएफ की शक्ल में इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर पोस्ट हो जाएगी आफ्टर इवरी मजलिस, ताकि आपके पास जो है वो प्रेजेंटेशन की शक्ल में टॉपिक रहे। हम इस टॉपिक का आगाज करेंगे सूरह मुल्क की बिगिनिंग से, कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहु अला कुल्ली शयइन कदीर अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। अच्छा, सेकुलरिज्म और मजहब के ऊपर गुफ्तगू से पहले जो एक इंट्रो समझें आप इसको, इब्तदाइया के तौर पर कुछ बातें जरूरी हैं। आखिर एक एथियस्ट और इलाहादी, जिसको हम कहते हैं मुलहिद से, इलाहाद मुलहिदीन इसी से है, एक इलाहादी सोसाइटी और एक इलाही सोसाइटी, खुदा की बनाई हुई खुदा के दिए हुए निजाम की सोसाइटी में डिफरेंसेस क्या हैं। अर्ज फर्ज करें कि कल हमारे 12वें इमाम का जहूर होता है तो किस तरह की सोसाइटी बनाएंगे, उसमें रूल रेगुलेशंस क्या होंगे, कल्चर किस तरह का होगा, एक्टिविटी कैसे होगी, उसके दायरे हम डिटेल में तो नहीं जाने वाले उसके, लेकिन उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं। यहां से फिर हम उस टॉपिक के लिए एंट्री मारना हमारे लिए इजी हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास डिफरेंट सोसाइटीज हैं, ईस्ट में वेस्ट में, मजहब की बुनियाद पर किसी हद तक, मसलन नॉन मजहबी, नीम मजहबी, आदि मजहबी, बिल्कुल आउट ऑफ मजहब है। फिर जो है कल्चरल वाइज है कि कहें पर जेंडर के एतबार से कुछ बैरियर्स या कुछ आइडेंटिटीज और कुछ वैल्यूज मौजूद हैं, कहें पर बिल्कुल इसकी कोई वो नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, किसी किस्म की डिफरेंसेस के कायल नहीं है लोग, बल्कि इसको वो एक तरह से एक उसके तौर पे समझते हैं कि ये बेसिक जो है एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के तौर पे ले लेते हैं और कहते हैं जी कि ये जो है एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, गलत बात है, आप जो है कैसे कह सकते हैं, कोई कोई भी हो सकता है। और बात इससे आगे बढ़ रही है कि इंसान, अब इंसान को इतनी यानी उस उन सोसाइटीज में इस हद तक आजादी और फ्रीडम दिया जा रहा है कि वो कहते हैं जी कि आप की जो ख्वाहिशात है ना वो आप बेलगाम रखें उसको, उसके आगे कोई लगाम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी चीज की तरफ तवज्जो इंटरेस्ट पैदा करता है, फॉर एग्जाम्पल मर्द मर्द से इंटरेस्ट पैदा कर लेता है तो आप ना नहीं रोक सकते हैं, औरत औरत से कर लेती है तो आप नहीं रोक सकते इन चीजों को, ये बैरियर्स आप पैदा नहीं कर सकते, आप ह्यूमन फ्रीडम को नहीं रोक सकते। और ऐसे ऐसा करने को कोई बुरा नहीं समझना चाहिए, क्राइम की बात तो दूसरी है, गुनाह का कंसेप्ट हो सकता है, कहते इसको आप बुरा भी ना समझे, बुरा भी आपको नहीं समझना चाहिए। अच्छा, एक इस तरह के वैल्यूज, इसको अगर वैल्यू कहें, या इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स के साथ तश्कील पा रही है एक सोसाइटी, और एक सोसाइटी है कि जिसके अंदर जो है बिल्कुल इसके बरक्स सूरत हाल है। लिहाजा इलाहादी सोसाइटी और इलाही सोसाइटी, क्योंकि इंसान उस सोसाइटी में रहता है तो ला महाला कहें ना कहें वो उस रूल्स को उसे फॉलो करना पड़ता है, एटलीस्ट वो उसे एक्सेप्ट नहीं करे, अप्लाई ना करे अपने ऊपर, देयर समथिंग एल्स, वो एक अलग में, लेकिन आपको कम से कम उस रूल का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो उसके ऊपर बिलीव करते हैं, उसको लेके चलते हैं, उसको एक अहमियत वाली चीज समझते हैं, आप उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, एटलीस्ट जो है आप बेशक ज्यादा से ज्यादा खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारे पास ऐसी सोसाइटीज भी हैं और इसलिए हमें जरूरी है कि इलाहादी सोसाइटी का जो फाउंडेशंस हैं, इलाहादी सोसाइटी में जो एथियस सोसाइटी है उसकी जो बेस्ट ऑफ फाउंडेशन है वो सारी की सारी एक पावर के अंदर छुपी हुई है, सुपर पावर नेचर है, वो हर चीज को नेचर के ऊपर खुलासा करते हैं, ने सारी चीज तकरीबन नेचर की तरफ चली जाती है। डिफिनेशन ऑफ ह्यूमन को अगर आप उठा के देख लें कि इस सोसाइटी के अंदर ह्यूमन डिफिनेशन क्या है, भाई इंसान को आप क्या कैसे डिफाइन करेंगे, इंसान आपने बहुत सी चीजें डिफाइन करते हैं, और आप कहते हैं कंप्यूटर को डिफाइन करें, या चैट जीपीटी को डिफाइन करें, गूगल को डिफाइन करें, या आप कहते हैं जी सूरज के बारे में, सूरज की तारीफ तो करें जरा, पहाड़ों की तारीफ करें मसलन, तो तारीफें मौजूद है ना, डेफिनेशंस हैं। तो ह्यूमन डेफिनेशंस क्या है? अगर आप आराम से, आपके पास इंटरनेट है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो जो उलूम, जो सोशल साइंसेस हैं, सोशल साइंसेस के अंदर अगर आप जाएंगे, या फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी में जाएंगे, ह्यूमन डेफिनेशन को तलाश करेंगे, तो वो कहेंगे जी देखें, इंसान एक बोलता हैवान है, टॉकिंग एनिमल कहते हैं, ह्यूमन इज अ टॉकिंग एनिमल, या थिंकिंग करने वाला एनिमल, थोड़ी सी अपग्रेड कर दिया है, थिंकिंग एनिमल है। और जो पैदाइश और मौत के दरमियान टोटल इसकी जो है ना आइडेंटिटी है, खुलासा हो जाती है, और फना होता है, मरता है, पैदा होता है, एक टाइम गुजारता है टॉकिंग एनिमल के तौर पर, और उसके बाद खत्म हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी भी साथ में मिट जाती है। ये टोटल डिफिनेशन है। अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप साथ में कितने भी कलर्स लगाएं, खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, उसको वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ह्यूमन डिफिनेशन ये है, इज अ टॉकिंग एनिमल, पैदा हुआ है, लाइफ गुजारेगा, जिद्दोजहद करेगा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लाइफ गुजारने की, इसलिए वो तमाम स्टेप्स उठाएगा जिससे उसकी लाइफ को प्रोटेक्शन मिलती है, और मौत को टालने की कोशिश में रहेगा, लेकिन मौत ने आना है, कटल फैसला है, जिस दिन मर गया वो खत्म हो गया, सफ़े हस्ती में अब उसका कोई निशान नहीं है, यादें हो सकती हैं उनके अजीजों के दिलों में, उसके किए हुए काम हो सकते हैं, लेकिन उसकी अब खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई, जैसे लाइक अदर प्लानट और एलिमेंट्स, पत्थर, दरख्त, जैसे एक दरख्त है, वो जो है फर्ज करते हैं कि एक दरख्त बड़ा हो जाता है, और उसके बाद मटेरियल एवोल्यूशन या मुख्तलिफ जो इरतकाई अमल से वो गुजरता है, और उसके बाद वो दरख्त कुछ अरसे के बाद आप काट देते हैं, उसको लकड़ी बना देते हैं, उससे आप फर्नीचर बना देते हैं, फर्नीचर कुछ अरसे के बाद फरसुदा हो जाता है, या वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है, या वो जल के खत्म हो जाता है। सेम लाइक इंसान, सेम डिफिनेशन इंसान की, मर गया तो सेम है, जैसे वो दरख्त खत्म हो गया था, जैसे वो खत्म हो गया, ये बेस है, फाउंडेशन है। मुकाबले में हम इलाही सोसाइटी की फाउंडेशन के अंदर, क्योंकि इंसान को इससे डिफरेंट हम डिस्कस करेंगे कि ये सुपर एग्जिस्टेंस में से है ना, ये सुपर एग्जिस्टेंस है, ये सबसे बड़ा यानी सबसे मजबूत पोजीशन रखने वाला मौजूदात में से है, जिसको हम हमारी मजहबी जबान में कहते हैं अशरफुल मखलूकात। मखलूकात इसलिए वर्ड यूज करते हैं क्योंकि मखलूक है, किसी ने उनको क्रिएट किया है, क्रिएटर है इनका, इसलिए लफ्ज खालिक को मखलूक यूज किया। अगर हम वेस्टर्न फिलोसफीज या इलाहादी फिलोसफीज से बात करेंगे तो वो नहीं कहेंगे, कहेंगे मौजूदात, एग्जिस्टेंस है, कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं ये नहीं पता, इसकी एक मैटर भी नहीं करता हमारे लिए, देख रहे हैं ना टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज किस तरह के हैं। हमें कुरान ने कहा मखलूकात हैं, दैट्स मीन देयर इज ए क्रिएटर, खालिक है, क्रिएटर्स हैं। इलादी सोसाइटी के अंदर जो टर्म यूज होती है वो कहते हैं एग्जिस्टेंस है, भाई यू आर एग्जिस्टेंस, कौन है, इट्स डजंट मैटर, बस मैटर ये है कि आप अभी हो, मौजूद हो, एग्जिस्ट कर रहे हो, सो यही है, देखें देख रहे हैं ना कितने। तो यहां पर खुदा इलाही इलाही जो सोसाइटीज हैं उसके अंदर फाउंडेशन में ये चीज नहीं आएगी, वो तो कहेंगे जी आप मखलूकात हैं, एक खालिक भी है, बस इतना काफी है। इंसान के पास अकल है जिससे वो जगह जदीद नई नई तखलीकात करता है, तो इतनी सी बात को भी डिस्कवर करना उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो मटेरियल को यूटिलाइज करके क्या से क्या उसकी क्रिएशंस हो रही हैं, तो वो थोड़े से जो है अपने दिमाग को सोशल साइंसेस की तरफ भी डालकर, फलसफा और लॉजिक की तरफ भी डाल के थोड़ा थिंकिंग करके कह सकता, अच्छा क्रिएटर ने मुझे क्रिएट क्यों किया था, क्योंकि मुझे पता है मैंने कंप्यूटर क्रिएट क्यों किया, मैं एज ए ह्यूमन जानता हूं कि अगर मैंने कोई चीज बनाई है तो उसके पीछे बनाने की फिलॉसफी क्या है, मेरा हदफ क्या है, क्या मेरा गोल्स थे, मैं क्या ढूंढ रहा था उसके अंदर। अगर मैं फर्ज करें चैट जीपीटी बना चुका हूं, किसी ने क्रिएट किया है ना, क्रिएटर है उसका, तो उसके मकासिद उसके जहन में थे कि वो क्यों बना रहा है उसको। तो यहां पर भी अगर जब कहे मखलूक, दैट्स मीन मेरे क्रिएटर का हदफ क्या है कि मुझे क्यों खलक किया है उसने। वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ी ज्यादा इसमें कोई ऐसी फिलोसफी की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। एक लफ्ज जो हम यूज करते हैं वो लफ्ज पूरा का पूरा एक मीनिंग्स अपने अंदर छुपाए हुए होता है, लेकिन थोड़ा रुकने की जरूरत है वहां पर कि ऐसे यूज नहीं करें जैसे कि नॉर्मली, क्योंकि हमने बड़े हो गए थे इसी तरह लफ्ज इस्तेमाल करते। वैसे लफ्ज मोमिन, कल हमने थोड़ी सी बात की, अगर मोमिन है क्या? कुरान कैसे डिफाइन करता है मोमिन को? हदीस ने मोमिन को कैसे डिफाइन किया है? शिया है क्या? अगर शियत का मतलब क्या है? शिया तो अबू सुफियान के भी हैं, शिया तो फिरौन के भी हैं, शिया तो यजीद के भी थे, तो शिया तो खुद कोई मुकद्दस लफ्ज तो नहीं है। शिया अबू सुफियान के भी हो सकते हैं, शिया मौला अली के भी हो सकते हैं, तो शिया होने में तो कोई फख्र की बात नहीं है। मौला अली का शिया, व्हाट मीन उस मौला अली का शिया? आइडेंटिटी क्या है उसकी? किस तरह उसको हम अंडरस्टैंड करें? मौला अली ने अपने शियों को कैसे डिफाइन किया, बयान किया है? अबू सुफियान के फॉलोअर्स की तो डेफिनेशन हमें मोस्टली पता ही होती है, जो चीज पता नहीं होती वो हमें अपना नहीं पता होता। तो ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इसीलिए मखलूकात और मौजूदात के दरमियान ये फर्क है। मौजूदात मखलूकात, हम मखलूक हैं ना मौजूद, मौजूद भी है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम जो है मखलूक हैं। इसके अंदर आइडियोलॉजी, इस इलाही नजरिए में क्या है? नहीं जनाब, इंसान मरने से उसकी सारी कुछ हस्ती मिट नहीं जाती है, बल्कि मरने के बाद असल उसका वो स्टार्टिंग शुरू होती है, पहचान उसकी आइडेंटिटी अब शुरू होती है, क्योंकि उसने जो टेम्परेरी पीरियड होता है, जो ट्रांजिट पीरियड होता है, वो पास किया होता है और परमानेंट लाइफ के में इंटर हो चुका होता है। ये है हमारे पास इलाही आइडेंटिटी। वो कहता है ठीक है, इंसान दुनिया में आने से पहले उसकी एक पहचान रही है, उसकी एक पहचान थी है, जिसके बारे में कुरान ने कहा अलम अहद इलैकुम या बनी आदम, ए बनी आदम हमने तुमसे वादा लिया था। कहाँ वादा लिया था? खुदाया आलम अरवाह में तुम्हारी रूह तुमसे पहले खलक हो चुकी थी, और तुम्हारी रूह से, जिसको आप फितरत भी कह सकते हैं, तुम्हारी फितरत से हमने वादा लिया था कि जब जमीन में जाओगे तो तुमने वहां पे गड़बड़ नहीं करनी है, ये तुम्हारे रास्ते हैं, ये तुम्हारी क्रिएशन का हदफ और मकसद है, तो तुमने उसी के ऊपर चलना है और उसी के ऊपर लाइफ गुजारनी है। और जहन में रखो, अभी जो हम तुम्हें भेज रहे हैं तो वो एक ट्रांजिट पीरियड के लिए है, असल में इस पीरियड के लिए तुम्हें खलक नहीं किया है, असल में एक परमानेंट पीरियड है आगे। उसके लिए आपने जितने सोर्सेस रिसोर्सेस की वहां रिक्वायरमेंट है वो उस शॉर्ट पीरियड में रेडी करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। अब आपके ऊपर है किस तरह की चीजें प्रिपेयर करते हो, जो अब जर्नी शुरू हो जाएगी तो वहां रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं या अपनी मर्जी और मनमानी करते हैं, ये असल में है वो जो कहा आलम है। तो टोटली डिफिनेशन ही हमारी क्या हो गई? अलग हो गई है। इसी तरह यूनिवर्स के हवाले से है। अब आप ये बताएं कि इन दो सोचों की बुनियाद पर, ये जो पहली सोच है ना, इसके अंदर एक इज्म है, बहुत इजम्स मिलेंगी। मैं आपके दिमाग को थकाना नहीं चाहता इतने सारे इजम्स बता के, जिसको कहते हैं ह्यूमनिज्म, फ्रेंच लैंग्वेज में कहते हैं उमनिज्म, क्योंकि वो ह्यूमन को ओमन पढ़ते हैं, इंसान परस्ती। ह्यूमनिज्म का मतलब है इंसान परस्ती। ये अगली फाउंडेशन है इनकी। सेकंड फाउंडेशन जो आती है वो ह्यूमनिज्म। ये ह्यूमनिज्म क्या है? खुदा परस्ती के मुकाबले में, खुदा परस्ती के मुकाबले में इंसान परस्ती है, जो कुछ है वो इंसान है। जाहिर है इसको सपोर्ट देने के लिए डार्विनिज्म भी आती है, डार्विन की थ्योरी, एवोल्यूशनरी थ्योरी है, बहुत सारी और चीजें हैं। अभी रिसेंटली जो दरियाफ्त हुए हैं, बिग बैंग का जो कंसेप्ट है वो भी सपोर्ट में लेके आते हैं। तमाम साइंस जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है वो सारी इसके अंदर आ जाती है, सपोर्ट लेते हैं उससे, और हर चीज को इस तरफ लेके जाते हैं कि देखो भाई इंसान है और इसका कोई क्रिएटर नहीं है। मटेरियल के अंदर बहुत सारे फिनोमेनास 100,000 ईयर्स या मिलियंस ईयर्स पहले जो है हुए, और उसके बाद अब एवोल्यूशनरी थ्योरी के असास और बुनियाद पर हम यहां पहुंचे हैं, वही आखिर ही। ये एक बुनियाद और सोच होती है। अब ये बताएं, ऐसी सोसाइटीज जो इस कंसेप्ट के साथ तश्कील पाती हैं। एजुकेशन सिस्टम, आपका तरबियती निज़ाम, आपका सोशल निज़ाम, आपका इकोनॉमिकल सिस्टम, तमाम के तमाम जो चीज़ें इस बुनियाद पर बनती हैं, उस सोसाइटी के अंदर फिर आप ये तवक्को नहीं रख सकते हैं कि वहां से कोई खुदा आएगा, वहां पे कोई ऐसी चीज होगी जिसको कहें जो फितरत इंसानी के करीब है। इंसानी फितरत, मैं लफ्ज नेचर यूज नहीं कर रहा क्योंकि खुद नेचुरलिज्म एक मूवमेंट है। नीचे जो इनका बहुत बड़ा थिंकर गुजरा है, अलाम इकबाल ने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया इनको, हालांकि नीचे दूसरों से कदरे बेहतर था इनके थिंकर्स के अंदर से। तो ये नीचे साहब को बिता कि वो नेचुरलिज्म का मसला है। यहाँ नेचर, नेचर इज मदर कहते हैं, नेचर को मदर कहते हैं, माँ है ये हमारी माँ है नेचर। इसीलिए जो नेचर की प्रोटेक्शन की जो एक मूवमेंट दुनिया के अंदर मौजूद है, उसके बेक पर जो और सारी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से हमारी तवज्जो भी है, हम भी समझते हैं गलत चीज है, उसे रोकना चाहिए, कुरान भी इसकी तरफ इशारा करता है, और क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं वो इसी से, पोल्यूशन का मसला वगैरह वगैरह है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वन ऑफ द आइडियोलॉजी जो बिहाइंड द ये सारी मूवमेंट है वो नेचुरलिज्म की है। नेचर परस्त लोग जो गोश्त नहीं खाते हैं, इवन तो हम कहते हैं भाई सब्जी, फिर उस सब्जी में भी तो एक तरह से जान मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप एक बीज को जमीन में गाड़ते हैं, वो एक तनावर किसी पौधे में डल के बाहर आता है, तो आप उसको खाते हुए आपको महसूस नहीं होता कि आप उसकी जान मार चुके हैं, खा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं सब्जी को। आपकी साइंस ने ही कहे पर कहा था, साइंस मैगजीन के अंदर बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था कि कहते हैं कि उन्हें भी एहसास होता है, यानी उनमें भी हिस है, फिफ्थ सेंस में से एक सेंस उनके पास भी है, इसका मतलब साइंस कह रही है, तो उनको भी तकलीफ हो रही है। कंट्रडक्शन ऑफ क्या कहते हैं थ्योरीज यहां पर पैदा हो रही है। तो लिहाजा जो बात असल में है कहने की वो ये है। अब मैं जो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज को चेंज करने जा रहा हूं, तो यूं कहूंगा इलाहादी माशरा यानी इस्लाम से पहले का जाहिली माशरा, उसके मुकाबले में अगर हम कहें तो इस्लाम के बाद जो तश्कील पाया था नबवी माशरा, इलाही भी कह सकते हैं, खुदाई भी कह सकते हैं, नबवी भी कह सकते हैं, कि हुजूर पाक ने तश्कील दिया था, ये असल में ये प्रॉब्लम अभी तक मौजूद है हमारे पास। जाहिली माशरे में क्या स्टैंडर्ड्स थे और आज गैर इलाही माशरों में क्या स्टैंडर्ड्स हैं, इन दोनों को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि ये फाउंडेशंस हैं दोनों सोसाइटीज के। नीचे जो आइडियोलॉजी वो करती एग्जिस्ट करती है वो उस फाउंडेशन बना रही होती है। सलावत पढ़ लीजिएगा, सलावत पर मोहम्मद
वाले।
अच्छा, जाहली सोसाइटी के अंदर एक जो स्टैंडर्ड था वो ये था कि मेजोरिटी इज सुपीरियर, हर्फ आखर है, मेजोरिटी जो फैसला ले लेना वो हर्फ आखर है जनाब, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर किसी सोसाइटी में 100 अफराद की पॉपुलेशन है और उसकी मेजोरिटी 55% किसी एक मैटर के बारे में डिसीजन देती है या फैसला लेती है, राय देती है, तो बाकी 45 को ये हक हासिल नहीं है कि उसकी मुखालफत करे। तो अक्सरियत, अच्छा अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं जरा गौर कीजिएगा। एक दफा हम कहते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अक्सरियत और अकलियत, अलिफ काफ लाम ये थे, अकलियत से ना अकल यानी कलील, कलील यानी कम। अच्छा मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अक्सरियत अकलियत के मुकाबले में है, जाहिर है कि पता है कलील के मुकाबले में कसीर आए हुए हैं, तो जाहिर है कसीर मलवा लेंगे, अपनी बात नहीं मानेंगे तो मनवाएंगे। अच्छा इस्लाम ने आके क्या समझाया कि इसको कहा हाँ बात सही है, जब एक सोसाइटी में ज्यादा लोग मेजोरिटी नहीं मानते तो फिर वो बात होने वाली बात नहीं है, तो बस ठीक है आप इसको एक्सेप्ट कर लें, बड़ा अच्छा फार्मूला और बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है। नहीं, इस्लाम ने अलिफ वाली अकलियत को हटाकर ऐन वाली अकलियत डाल दिया, उसको कहा अक्सरियत नहीं अकलियत, आकिलाना काम, अक्सर की मर्जी नहीं, अकल की मर्जी। अगर कोई काम लॉजिकली ठीक है, अहले अकल और समझदारी और फहम और फरासत के स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है तो वो काम सही है, चाहे उस अकल वाले और समझदारी वाले काम की हिमायत में 5 बंदे हों मुकाबले में 95 खड़े हों। का 95 की कोई अहमियत नहीं है, वो 5 बंदों की अहमियत है, इसलिए कि वो जो बात कर रहे हैं वो अकली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। अकलानियत, अकल परस्ती, परस्ती का लफ्ज शायद मुनासिब ना हो, यानी अकलियत पसंदी। इसलिए आप हैरान होंगे कि कुरान मजीद में ज्यादातर जो वर्ड्स आपको मिलेगा, वन ऑफ देम, वो है कभी क्रिटिसाइज कर रहा है कुरान, कभी अप्रिशिएट करता है, कभी अलर्ट करता है कि प्लीज बी अकिल, अकलमंद रहो, अकल को इस्तेमाल करो। तुम लोग अकल इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ज्यादातर लोग तो अकल इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, ज्यादातर लोगों तो जो है ना अकलमंद है ही नहीं है, अकल के वाले कामों के पीछे जाते ही नहीं है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जाते हैं। कहता है ये मसला उन लोगों की समझ में आएगा ना जो अकलमंद हैं, जो अकल इस्तेमाल करते हैं, उलिल अलबाब या कौमिन याकिलून। अब अजीब है कि लफ्ज जो यूज किया है, फरमाया वहुम कौमुन याकिलून। अच्छा, कौम याकिल यानी कौम आकिल। आपने सुना कोई ऐसी कौम गुजरी हिस्ट्री में जिसको कहते थे आकिलों की कौम? कौम आद गुजरी है, कौम समूद गुजरी है, कौम फिरौन गुजरी है, कौम लूत गुजरी है, फिर कुरैश के दौर में यानी बाद की हिस्ट्री को अगर उठा के देखें तो कुरैश का कबीला गुजरा है, खजरज गुजरा है, औस गुजरा है, ये सारी अकवाम गुजरी है ना, अकवाम अरब हैं, अकवाम फारस हैं, अकवाम तुर्क हैं, अकवाम यूनान हैं, अकवाम क्या कहते हैं यहाँ आपके लातिनियन अकवाम हैं, फ्रेंच हैं, जर्मन हैं, ये तो आखिरों वाली कोई कौम हिस्ट्री है हमारे पास? वेल ड्यूरांट से पूछते हैं, हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, जो उसने इतने वॉल्यूम पर मुश्तमिल किताब लिखी है, वो बहुत ज्यादा उसने दुनिया की हिस्ट्री को कवर किया है, मेरे ख्याल में 100 से अबो उसकी वॉल्यूम्स हैं। वेल ड्यूरांट में कोई वहां भी कोई कौम ऐसी नहीं नजर आती है हमें कि जिसमें लिखा हो आखिरों वाली कौम फला खित्ते में बसती थी वगैरह वगैरह। तो फिर कुरान क्यों कह रहा है कौम इन याकिलून, ये कौन सी कौम है? बहुत अहम नुक्ता है। असल में कुरान ये कहना चाहता है, कल हमने नमाज मगरिब और इशा के दरमियान जो गुफ्तगू की थी उसमें इस लफ्ज को हमने यूज किया था कि जिसमें ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ था नमाज के लिए, सेम लफ्ज यूज हो रहा है अकलमंदी और अकल के इस्तेमाल के लिए, अकल को बरोए कार लाने के लिए सेम वर्ड यूज हो रहा है। वहां फरमाया था अकीमु सलात, मुकीमून अस्सलात, मसलन नमाज को खड़ा करते हैं। तो नमाज क्या चीज है? नमाज कोई खड़ा होता है क्योंकि नमाज दीन का सुतून है, सुतून को खड़ा किया जाता है, हमेशा कायम किया जाता है। इमाम कायम क्यों कहते हैं हम? कायम आले मोहम्मद कहते हैं हजरत इमाम जमाना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। असल में इसलिए है कि वो कयाम से, यकीमून अकामा यकीमू, कयाम से है। नमाज के बारे में भी एस्टैब्लिश करना, नमाज को एस्टैब्लिश करना, कायम करना नमाज को, कयाम है नमाज। क्योंकि नमाज पढ़ना एक और चीज है, नमाज क्योंकि दीन का सुतून है, सुतून को तो हम ऐसे ही पिलर को तो लटा के नहीं रखते ना, पिलर तो खड़ा होता है हमेशा। या नमाज की सकाफत बनाना, नमाज को इम्पोर्टेंस देना, अहमियत देना, जाती जिंदगी में, इज्तिमाई जिंदगी में, सोशल जिंदगी में, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो कुरान मजीद कोट करता है कि हम आगे ज्यादा डिस्कस करेंगे, कहता है नेक लोगों को जमीन में पावर दे देना हम लोग, अल्लदीन इन मक्कन्ना हम फिल अर्द, अगर नेक लोगों को हम जमीन में ताकत दे, पावर दे कि वो रूल करें जमीन में, तो पता है क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले प्रायोरिटीज क्या होंगी उनके, एजेंडे मैनिफेस्टो क्या होगा? अकामुस सलात सबसे पहले, व आतुस ज़कात। हमारे आइम्मा के बारे में भी जो हम फखरिया जुमले पढ़ते हैं ज्यारतों में, कि ए हमारे इमाम, फख्र से कहते हैं ए हमारे इमाम, आपका एजाज ये है, खुदा ने आपको जो मेडल्स दिए हैं वो ये हैं, आपकी पहचान ये है, आपकी कुर्बानी इसलिए थी कि अशहदु अन्नक, मैं गवाही देता हूं, कद अकमत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहलत अनिल मुनकर वतअत अल्लाह हक अदा कर लेकिन मैंने बस पता चला। असल में हमें क्या कहना चाहता है, अपनी जिंदगी को कयाम बिल अकल रखो, आकिलाना जिंदगी गुजारो। नहीं कहता अक्सरियत करती है तो मेजोरिटी के पीछे चलूंगा, जैसे वो एक कहते हैं कि आप जमाने के साथ चलो ना, जमाने के साथ चलने का मतलब क्या है, मेजोरिटी के साथ चलो, मेजोरिटी जो गैर आकिलाना काम करती है तो मेजोरिटी के साथ चलो। क्यों भाई, मैं कोई बुद्धू हूं, बेवकूफ हूं, अकल से पैदल हो चुका हूं, क्यों चलूंगा, मेजोरिटी गलत करती है मैं नहीं करूंगा। ये जो हमें हमारे कानून में बचपन से डाले जाते हैं बाज वर्ड्स, ये बिल्कुल एंटी कुरान है, एंटी तालीमात है। बस जो प्रिंसिपल था जाहिली सोसाइटी में, जो आज भी आया है डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत हमारे पास, डेमोक्रेटिक रूलिंग के तहत, वो है मेजोरिटी की मानी जाएगी। मैं बेशक मेजोरिटी की बात अकल की नापुख्तगी हो, नासमझी हो, तो भी एक्सेप्ट किया जाएगा। क्यों, कुरान तो कह रहा है आप मेजोरिटी की नहीं, आप अकलमंदों की बात को माने, एक बात। और फिर कुरान एक और टॉपिक को भी इसी मौजू से रिलेटेड छोड़ता है। एक अरबों में कल्चर ये था, वो ज्यादा होने पे फख्र करते थे, मसलन मेरे घोड़े तुमसे ज्यादा हैं, मेरे पास कनीजें तुमसे ज्यादा, मेरे पास गुलाम तुमसे ज्यादा, मेरा कबीला तुमसे बड़ा, तुमसे ज्यादा तादाद वाला कबीला, मेरे कबीले में 1,000 लोग हैं, तुम्हारा छोटा सा कबीला जिसमें 10-15 लोग हैं, मेरे पास पैसा ज्यादा, तुम्हारे पास पैसा कम, मेरे घर ज्यादा, मेरे माल ज्यादा, ज्यादा 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 ज्यादा, वही जो अक्सरियत वाला कंसेप्ट था वो। इसको कुरान ने सूरह तकासुर के अंदर कोट किया, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, ताकि वो जो ज्यादा कसरत पर तुम लोग फखर करते थे ना, यहां तक कि फखर करते करते कतर करते अचानक कब्र में पहुंच गए तुम, तुमने अपनी कब्र देखी, समझ में आया ये जितनी चीजें ज्यादा थी मेरे पास दूसरों से, और उस पर मैं तकासुर और कसरत पर फखर करता था। अक्सरियत उसी खानदान से निकला है, कसरा तकासुर अक्सरियत कसीर, वो सब कुछ इसी से अंदर है। अच्छा, कुरान ने इसके मुकाबले में क्या दिया हमें, मोमिनीन से कहा देखें आप तकासुर ना मांगे खुदा से, ज्यादा दौलत, ज्यादा बच्चे, ज्यादा बीबियां, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा घर, ज्यादा पैसा ना मांगे, बल्कि अच्छा पैसा, अच्छी औलाद, अच्छी बीवी, अच्छा शोहर, अच्छा घर जिसमें सुकून मिले, क्योंकि घर का हदफ सुकून है, बिल्डिंग दिखाना तो नहीं है लोगों को कि मेरी देखो इतने मीटर या इतने कनाल पे फैला हुआ मेरे पास विला पड़ा हुआ है वगैरह वगैरह, ये तो नहीं है ना। का आप अच्छा ढूंढे, अच्छे को कहते हैं कुरान में खैर, जिसका उर्दू अच्छा है, कहा तकासुर ना मांगे कौसर मांगे आप, इन्ना आते ना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर दिया है। कौसर के मल्टीपल मीनिंग है, कौसर के एक्चुअल जो मीनिंग है वो तो सय्यदे कायनात हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो कुरान ने कहा देखें आपके पास जो एक स्टैंडर्ड बन गया है सोसाइटी में, ये गैर इलाही मैयारात हैं, गलत है, आप हर चीज में अक्सरियत चाहते हैं तो ये गलत है, आप बेहतरी चाहें, खुदा से जो मांगे तो कहें खुदाया मुझे बेशक कम दे लेकिन खैर हो उसके अंदर, ज्यादा हो और शर हो तो फायदा क्या है। वो जो बाज मौला अली के जुमले हैं, या बाज ऐसे लोग बुजुर्गों के अकवाल भी चलते हैं कि जिसमें कहते हैं जी कि वो दौलत बजाय उसके कि वो आपको फायदा पहुंचाए, आप उसकी ड्यूटी पे लग जाएं, उसको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी पे लगें, तो उस दौलत का फायदा क्या है, जिसको बचाने के पीछे आदमी की जान चली जाए, इज्जत चली जाए। ये जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में स्पेशली आप देखते हैं जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, ये सारे इज्जत गंवा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, बेइज्जती खा रहे हैं, सब क्या अपनी दौलत को जो चोरी से फ्रॉड से बनाई है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कहा कि कौसर मांगे खुदा से, तकासुर। अब ये दूसरा जो प्रिंसिपल है जो सोसाइटी के अंदर उस सोसाइटी में अफसोस के साथ मौजूद था और बाद में हुजूर पाक ने ये सोसाइटी बदली थी। एक और पॉइंट्स पे और फिर टॉपिक की तरफ जाते हैं। इसके अंदर एक और बड़ा प्रॉब्लम था कि ह्यूमन डिफिनेशन गलत थी वो बिफोर इस्लाम, जैसे कि आज भी गलत है मॉडर्न दौर में। हम 21वीं सदी में हैं। ह्यूमन की डिफिनेशन मैंने आपके सामने किया, टॉकिंग एनिमल, थिंकिंग करने वाला एनिमल वगैरह वगैरह वगैरह, और उसको एक ऐसा ऐसा जो कि लिमिटेड है, मर गया खत्म हो गया, पैदा होने से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं है, फिनिश्ड इन द एंड। उस दौर में ह्यूमन डिफिनेशन के अंदर मल्टीपल इश्यूज थे, लेकिन मैं एक मेजर इशू को एड्रेस करके आगे निकलूंगा ज्यादा डिटेल में हम, क्योंकि ये मेन टॉपिक हमारा नहीं है, तो ये तो एक बेस बनाने के लिए सेकुलरिज्म और मजहब की, उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। वो ये था कि ह्यूमन में एक ऐसी ह्यूमंस के अंदर कुछ ह्यूमंस को वो बिल्कुल इंसान समझने के लिए तैयार नहीं थे। एक तो उनमें सर फेरिस जो था वो ख्वातीन थी, औरतें, वो औरतों को मर्दों के बराबर ह्यूमन समझने के लिए तैयार नहीं थे। आप बिफोर इस्लाम आप उनके लिटरेचर को देखें, आप उनके जो पोइटर्स होते थे जो उस वक्त, क्योंकि पोइट्री के थ्रू जो भी सोसाइटी की जो थिंकिंग है, जो सोसाइटी में जो आइडियोलॉजी और जितने भी नजरियात हैं, वो पोइट्री के जरिए रिफ्लेक्ट होते थे ना सामने। आपको मालूम है कि काबे के अंदर सालाना एक फेस्टिवल होता था शायरी का। उस फेस्टिवल में जो सबसे हाईएस्ट लेवल की पोइट्री होती थी, वो सात पोइट्री, वो सात चमड़ों में लिखकर काबे की दीवार में लटका दिए जाते थे, और उस सात पोइट्री को परखने का स्टैंडर्ड क्या होता था, ये कोई अदबी पहलू जरूर होता था, लेकिन उसमें यह नहीं था कि कोई मैसेज है उसके अंदर, कोई बड़ा थॉट प्रोसेस सामने लाया, कोई नई कोई रिसर्च आई है सामने, कोई बड़ी आकिलाना बात आई है, नहीं ये नहीं थी। किसने बेहतरीन गुफ्तगू की है, अब वो जो गुफ्तगू है वो बेमानी हो, बेमकसद हो, लेकिन शायरी और अदबी एतबार से बड़ी जबरदस्त है तो मान लिया। जैसे हमारे बाज बाज हमारे यहाँ भी पोइट्री होती है, फला शायर की जी शायरी इतनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा आपका दिल दुखेगा, वो ऐसी बस बड़ी स्टैंडर्ड की ये थी। यार उस शेर को उठा के देखो क्या है, ये एक ऐसा दिल जला आशिक है जो महबूब के हुसूल की नाकामी में दिल जली बातें कर रहा है, इसको आपने एक बहुत बड़ी अजमत अजमत दी दी है। ना कोई मैसेज है, ना कोई पैगाम है इसके अंदर, ना कोई ऐसी बात है जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद, कुछ ना थी। ये मर प्रॉब्लम है या नहीं हमारे पास भी, तो उनके पास भी स्टैंडर्ड शायरी की इसी तरह थे। आप उस पोएट्री को उठा के देखें, अच्छा उस पोएट्री के अंदर वो क्या कहते थे, माँ को, इवन माँ को मदर जो एक स्टेटस होता ना, माँ का स्टेटस, वो देने के लिए तैयार नहीं थे। बीवी को एक इक्वल शरीक के हयात, जो कि एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज है हमारी उर्दू जबान का, एक्चुअली ये अरबी जबान का वर्ड है, ये उर्दू में यूज हो रहा है, शरीक के हयात, शरीक के हयात समझने के लिए इक्वल स्टेटस देने के तैयार नहीं थे, जो अभी भी हमारे सोसाइटीज में है साउथ एशिया के अंदर। वो कहते जी औरतें जो है ना वो जरा लो क्वालिटी की ह्यूमन है, इक्वल नहीं है। अच्छा इस्लाम आया, इस्लाम ने इस सोच की नफी की, उसने कहा नहीं ये गलत सोच है, आप कहा कि मैं खुदा के नजदीक दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल है, दोनों में कोई फजीलत किसी को हासिल नहीं है। अगर किसी ने फजीलत पानी है, एक दूसरे से आगे जाना है, बरतरी पानी है, तो वो करैक्टर होगा आपका। इन्ना अकरमकुम इंद अल्लाह अतकाकुम, मर्द और औरत, कहा या मिन ज़करी व उनसा, मर्द हो या औरत, जिसका किरदार ठीक होगा वो खुदा का महबूब होगा। ये एक नई चीज पनिशमेंट के अंदर भी आ गया और दीगर चीजों के अंदर भी आ गया, तो खुदा ने उसी तरह जो है बराबरी के साथ बात की, और जिम्मेदारियों के हवाले से हर एक के अपनी अपनी जिम्मेदारियां बयान की, और साथ में ये भी कहा कि ये जो जिम्मेदारियां आपको डिफरेंट अगर लग रही हैं, तो उसकी वजह आपकी जो जाहिरी बॉडी स्ट्रक्चर है और उसकी जो जरूरतें हैं, डिमांड्स हैं, उसके एतबार से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, क्योंकि औरत का जिस्मानी स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसके पास ये जिम्मेदारियां ना रहे, मुकाबले में मर्द की बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी बनाई है हमने कि कुछ जिम्मेदारियां हमने उसको नहीं दी है। जिस मर्द को नहीं कहा है वो बच्चे को दूध पिलाओ, कहां से पिलाएगा जब उसके पास छाती ही नहीं है दूध पिलाने के लिए, तो कहां से पिलाएगा। तो इस तरह कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी को किसी पर बर्तरी दी है, कहा नहीं, हमने बर्तरी देकर किसी को किसी पर खलक नहीं किया। कोई फजीलत किसी को किसी बेस पर नहीं है, इन क्रिएशन कोई बर्तरी नहीं। करेक्टर वाइज हाँ, बोथ ऑफ देम, कोई जो भी जिसका अच्छा करेक्टर होगा वो होगा। मसलन कुरान मजीद के अंदर फरमाया लिर्रिजाल नसीबु मिम्मा कसबू, कहा औरतों को भी वही मिलेगा जो वो कमाएंगी, चाहे माल में से कमाएं या आमाल में से कमाएं, बात एक ही है। वलिन निसाई नसीबन मिम्मा कसबना, मर्द और औरत दोनों जो कमाएंगे, माल कमाएं आमाल कमाएं, का वो उनका है, उनका हिस्सा है। ताजा मर्द के ऊपर क्योंकि एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है, इसीलिए मैनेजमेंट पावर बाज सेक्टर्स में मर्द के अंदर जो दिया है उसकी वजह यह है कि मर्द जो है वो एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी उसके हाथ में दी है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि अथॉरिटी विदाउट, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी हो तो ये हो गया, तो ये तो इंसाफ के खिलाफ है। कहें जी आप जिम्मेदार हैं लेकिन इख्तियार नहीं आपके पास, ऊपर कहें मैं कैसा जिम्मेदार हूं, क्योंकि इस जिम्मेदारी का नेचर ये है कि अगर मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है तो मेरे पास कुछ अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो मर्द को कुछ मैनेजमेंट ऑफ लाइफ मर्द के हाथ में दिया, लेकिन फरमाया दोनों इक्वल है। बस आप जो चीज हम बयान कर रहे हैं वो ये है कि खुदाए ताला ने जो सोसाइटी तश्कील दिलाई, जो सोसाइटी बनाई, जो इलाही आइडियोलॉजी की बेस पर थी और तमाम उसकी फाउंडेशन उस फितरत के ऊपर बनी थी जिस फितरत के ऊपर खुदा को इंसान, खुदा ने इंसान को खल्क किया है, लिहाजा क्या था वो इस तरह की सोसाइटी थी। हम आज लौट के आते हैं, आज की मॉडर्न सोसाइटी में अकलानियत नहीं है, अक्सरियत की मेजोरिटी की बात चलती है, कसरत की बात है, कौसर की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ तीसरा जो बड़ा मसला था उसके अंदर हमने ये तीन मसले बेनवाने एग्जाम्पल बयान किए हैं, वगैरह और भी चीजें हैं जिसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। तीसरा जो मसला है उसके अंदर तो सूरत हाल ज्यादा खराब हो गई है। वो ऐसी मूवमेंट्स हैं जो इस सोसाइटीज, गैर इलाही सोसाइटीज के अंदर चली, खवातीन के हुकूक से शुरू होकर फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी पे आ गई। फेमिनिज्म इज समथिंग एल्स, फेमिनिज्म यानी खवातीन के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, वो खवातीन की बालादस्ती की बात हो रही है। बालादस्ती इस्लाम ने कहा था, बालादस्ती कैरेक्टर वाइज, जो जिसका किरदार अच्छा वो बालादस्ती रखता है। मेरे नजदीक मैयार तो हमारे पास ये है ना, ज़करी व उनसा, मर्द औरत हो जिसका किरदार अच्छा है, तकवा से जिसको इंटरप्रिटेट किया कुरान ने, वो ज्यादा सुपीरियर है और वो ज्यादा ऊंचा मकाम और मंजिलत रखता है। लेकिन जो आज की सोसाइटी हमारे पास है उसमें क्या है, फेमिनिज्म है, और ये अब चीजें बहुत आगे जा रही है। इससे भी आप देख रहे हैं जो सूरत हाल बन रही है, अब कानून बन रहा है, वो मुखालिफत जुर्म शुमार हो रही है, जो कानून बन रहे हैं अब तो इंसान पसंद करता है कि वो एक किसी एनिमल में कन्वर्ट हो जाए, यानी उसका बस चले तो ट्रांसफॉर्म कर ले खुद को किसी एनिमल में। अब वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है तो उस जानवर के मुख्तलिफ खोल और उससे बनी चीजें पहनकर और उसकी एक्टिंग करता है कि अच्छा मैं एनिमल हूं, क्योंकि वो एज ए ह्यूमन होना उसको तकलीफ हो रहा है, मैं ह्यूमन नहीं वो एनिमल मुझसे ज्यादा अच्छा है, यानी इस तरह की सूरत हाल है। और यहाँ पर क्या है, अक्सरियत अगर इसको कानून बनाती है, पास करती है अकलानियत के मुकाबले में, ओके कानून आज के बाद हम डिक्लेयर करेंगे कि तुम हैवान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक कुत्ता हो, तुम एक जानवर हो, ठीक है आप, हम रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे तुम्हारे नाम को, जैसे कि हम दो मर्दों की शादी रजिस्ट्रेशन करने आए कर रहे हैं, दो औरतों की भी शादी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बगैर किसी फर्क के वो कपल हैं और हम इसको एतराफ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसके खिलाफ जो बोलेगा वो मुजरिम है, वगैरह वगैरह। और अगर यूके में गलती से भी कोई आलिम दीन हमारे सौदागर साहब के मुंह से कोई ऐसी बात निकलती है तो उसे कोर्ट बुलाया जाता है कि आपने जो है इंसल्ट किया है, वगैरह 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 वगैरह। ये क्यों, अक्सरियत का फैसला है जी, अकलानियत के मुकाबले में, समझदारी के मुकाबले में। अब चलते हैं सेकुलरिज्म। आपको मालूम है वैसे तो सेकुलरिज्म का दावा यह है कि हम तो सकरात और अरस्तू और बकरात के जमाने से ये आइडियोलॉजी थी, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, लिहाजा इसको वो लेके जाते हैं जो बरतानवी बहुत बड़ा राइटर था जॉर्ज जेकूब होलियक, पता नहीं मैं नाम सही पढ़ा है कि नहीं, 1851 के अंदर सबसे पहले लफ्ज सेक्युलरिज्म की जो टर्म है इन्होंने इस्तेमाल किया था। अच्छा, मुझे इसके छोटी छोटी चीजों के पीछे नहीं जाना, वो आप जान सकते हैं और आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्लिक करेंगे गूगल में तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। बल्कि आज मैं भाई के साथ बैठ के घर में थोड़ा सा चैट जीपीटी को देख रहा था, तो पता चला कि वो आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। सलावत बर मोहम्मद वाले।
सल्लल्लाहु
अच्छा, बॉटम लाइन क्या है सेक्युलरिज्म की? बहुत डिफिनेशंस हैं, रीजन वाइज थोड़ी थोड़ी माइनर डिफरेंसेस भी है। मुस्लिम कंट्री में अगर सेकुलरिज्म की डिफिनेशन मिलेगी आपको, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। डिपेंड करता है किस तरह का मुस्लिम कंट्री है। बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव किस्म का है, रिवायती माशरे जैसे पाकिस्तान है, तो वहां जो सेकुलरिज्म की डिफिनेशन पीपल्स पार्टी करेगी तो वो थोड़ा डिफरेंट करेगी, मुस्लिम लीग नून करेगी तो डिफरेंट करेगी, क्योंकि दोनों थोड़े से डिफरेंट उनके व्यूज हैं, पॉलिटिकल व्यूज। और कोई पार्टी करेगी तो भी डिफरेंट करेगी, एक ही विद इन वन कंट्री डिफरेंट करेंगे। बॉटम लाइन ये है जी कि रियासत, रियासत स्टेट और सियासत में आप मजहब को ना लाए, बस खुलासा ये है। मजहब की नफी से रियासत में और सियासत में। अब इसका एक फिलोसॉफिकल सेक्टर है, आगे जाकर हम बात करेंगे कि जो फिलोसॉफिकल सेक्टर है उसके अंदर क्या बातें हो रही हैं, इसका जो पॉलिटिकल सेक्टर है उसके अंदर क्या बातें हो रही हैं। फिलहाल जो बॉटम लाइन हमारे पास है वो ये है, सेकुलरिज्म यानी सियासत रियासत के अंदर से मजहब को साइड पे लगा देना, तफरीक करना, फर्क करना, मजहब की नफी सियासत में भी और रियासत में भी। अब मुस्लिम दुनिया के अंदर कुछ थोड़ी सी मैं कोटेशंस मेरे पास हैं। मसलन एक कहते हैं जी, सेकुलरिज्म को सियासत और रियासत तक महदूद करना और दीन को सियासी व रियासती अमूर से अलग रखना। लेकिन जनाब, आप दीन को किसी सोसाइटी में रखना भी चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, तो पॉलिटिकल जो डिफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म है वो खासकर मुस्लिम कंट्रीज में कहेंगे, नहीं नहीं जनाब, दीन को हम रहे ना, दीन रहे लोगों के पास, हमें वो तकलीफ नहीं है, बस रियासती मामलात में, सियासत के मामलात में दीन की कोई अमल दखल नहीं, बाकी लोगों के पास दीन रहे कोई मसला नहीं है। सियासत में मस्जिद, मेहराब, मेंबर, मजालिस वगैरह वगैरह, इनका कोई जो है ना किसी किस्म की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां पे रुकते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं। क्या मुसलमानों में या मुस्लिम हिस्ट्री में ये दीन और सियासत और रियासत की जुदाई और अलाहदगी और तफरीक का जो कॉन्सेप्ट, जिसको आज की दौर में सेकुलरिज्म टर्मिनोलॉजी से यूज किया जाए, याद किया जाता है, कोई ऐसी चीज मुस्लिम हिस्ट्री में कहें गुजरी है? हमने माजी में मुसलमान हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी चीज देखी है कि जहां पर मुसलमानों में ये नजरिया आया हो कि सियासत को, रियासत को दीन से अलग किया जाए और दीन एक अलग चीज हो, रियासत और सियासत अलग हो? क्यों, ये हम बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमें इन मुल्कों का तो पता है, यहाँ पापाइत डार्क एजिस में, जिसको ये पता नहीं मुख्तलिफ किस्म के कुरून वुस्ता भी यूज करते हैं, मिडिल एजिस भी कहते हैं, लेकिन असल में वो डार्क एजिस हैं यहाँ के। वो डार्क एजिस के अंदर तो पापाइत चर्च की हुक्मरानी थी और चर्च ने इस तरह की जुल्म व सितम किया, एक तरफ मजहबी तालीमात कंप्लीट नहीं थी, आगे हम डिस्कस करेंगे, और लोगों के ऊपर रोक टोक और इतनी ज्यादा सख्तियां की कि उसके अगेंस्ट एक रद्द अमल आया। उस रद्द अमल के नतीजे में उन्होंने कहा, भाई रियासत और सियासत से मजहब को साइड पे करो, क्योंकि ये जो चर्च है ना, इसने हमें तबाही फैला दिया, ना साइंस की तरक्की होने दे रहा है, ना इकोनॉमी की तरक्की होने दे रहा है। जब भी हम कोई थोड़ी सी तरक्की की तरफ जाते हैं, बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, ये फौरन फतवा सादिर करते हैं, ये तो हराम है, ये तो हजरत ईसा की तालीमात के खिलाफ है, ये बाइबल के अगेंस्ट जा रहे हो। और चर्च है पावर में, पापाइत है पावर में, पादरी पावर में है, उसके पास तमाम जो एक स्टेट की पावर होती है वो रखता है, लिहाजा वो उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो कोई तखलीकी काम नहीं हो रहा है, कोई तरक्की वाले काम नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए इनके यहाँ ये जहन आया कि रियासत और सियासत से मजहब को आप साइड पे कर दें जनाब। क्या हमारे पास भी कोई ऐसा था, हिस्टोरिकली कोई ऐसा हमारे पास है? यस, अनफॉर्चुनेटली, और बहुत ज्यादा देर के बाद नहीं, कि जब ये क्या कहते हैं सल्तनतें बनाना शुरू कर दिया, यानी बाद में आके मुगलिया दौर में हो गया हो या खिलाफत उस्मानी में हो गया हो ना, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। वो फौरन बात रसूल की वफात को 100 ईयर्स नहीं गुजरे, लेस देन 100 ईयर्स। और सबसे पहले पता है ओपनली ये कहां पे शुरू हुआ था? सीरिया में, शाम में, दिमश्क में, और बनी उमैया ने शुरू की। दिलचस्प ये है, बनी उमैया की हिस्ट्री ये है, जिनका हेड ऑफ द बनी उमैया अबू सुफियान, ये इसने कोई इस्लाम को एज ए रिलीजन, एज ए एक सच्चाई के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया था, जैसे बहुत सुने किया। इसने असल में एक फायदा उठाया इस्लाम के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी का। वो फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि कोई भी आदमी अगर जाहिरी तौर पर शहादत पढ़ता ना, कलिमा तैयबा पढ़ता है, तो हम उसे मुसलमान कंसिडर करेंगे। बेशक अंदर से दिल में उसने क्या सोचा है, क्या किया है, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए, और ना हम जान सकते हैं। जानने वाले भी अगर मौजूद थे उस जमाने में भी, तो उन्हें भी यही कानून दिया था, एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी थी। कहा जी बस देखो, उन्होंने किसी ने कलिमा पढ़ लिया तो अब उसकी जान माल इज्जत आबरू सबकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी, वो हमारा मुसलमान भाई है, आप उसको इस्लाम के दायरे में लाएंगे। तो प्रॉब्लम यह आई कि फतेह मक्का के वक्त कोई और ऑप्शन बचा नहीं था अबू सुफियान के सामने, सिवाय इसके कि दो ऑप्शंस थे, या तो आप अरेस्ट हो जाएंगे, अरेस्ट मीन मतलब क्या है, गुलाम बन, गुलाम बन जाएगा ना। अब गुलाम में चले गए, किसी के पास गुलाम बन के रहना पड़ा, किंग है अपने को कबीले का और किंग की तरह जिंदगी गुजारी है इस बंदे ने, तो वो तो नहीं पसंद करेगा कि गुलामी की जिंदगी किसी के जाके गुलाम बन जाए, फिर उसको पता नहीं गुलामी से कब आजादी मिलेगी। तो उसने क्या किया, मौला अली अलैहिस्सलाम नाजुल बलागा के अंदर फरमाते हैं, उस सिचुएशन को जो बेहतरीन तरीके से एनालाइज करके हमें मिल रहा है, वो मौला अली अलैहिस्सलाम का कलाम है नाजुल बलागा में, और बड़े शॉर्ट जुमले में जी। अच्छा, मा सल्ले अला मोहम्मद, मौला अली फरमाते इस्तस्लिमू वलम युस्लिम। इस्तस्लिम कहते हैं, आज भी है मॉडर्न अरबी में भी ये लफ्ज यूज होता है। इस्तस्लाम कहते हैं सिलेंडर करना, हथियार फेंकना, हथियार फेंक के सिलेंडर कर लेना, शिकस्त को मान लिया अभी कि आपके पास इस्तस्लाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस्तस्लिमो कह रहे हैं कि वो उन्होंने हथियार डाल दिए और सिलेंडर किया अपने आप को, वलम युस्लिम, दिल से इस्लाम को कबूल नहीं किया। मौला अली रसम ये किस चीज को कर रहा है, अबू सुफियान का पैगंबर खुदा के हुजूर आकर गुलामी से बचने के लिए कलिमा पढ़ने की मौला अली सलाम ने इंटरप्रिटेशन किया नाजुल बलागा में, कि ये जो एक्शन अबू सुफियान ने किया, क्या उसने इस्लाम को अब कबूल कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया एज ए एक ट्रू एंड सच्चे आइडियोलॉजी और नजरिया और अकीदे के तौर पर? मौला अली फरमाते नो, बात ये नहीं थी, बात यह थी कि उसने इस्लाम के अंदर जो एक फ्लेक्सिबल रूल है उसका पूरा का पूरा फायदा उठाया, उसने बेनिफिट ऑफ डाउट देता है इस्लाम, उसका पूरा फायदा उठाया। कहा या रसूल अल्लाह अन्नी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई अबू सुफियान आजाद भी है, अबू सुफियान जो है आज के बाद कोई इसको कोई तंग नहीं करेगा, ये हमारा मुसलमान बन गया, वस्सलाम, क्योंकि कलिमा पढ़ लिया है। मौला अली फरमाते वलम युस्लिम, लेकिन क्योंकि एक्चुअली दिल से वो कबूल नहीं कर चुका था इस्लाम को, तो पूरा उसका कबीला और वो खुद जब जब मौका मिला उन्होंने इस्लाम के अगेंस्ट ऐसे काम किए जिससे उनका अपना जो कबीला है या उनकी अपनी जो बनी उमैया की जो एक स्टेटस है वो महफूज रहे। अच्छा, इसमें एक बात और ऐड कर दूं, लंबी नहीं करनी मजलिस, में एंड की तरफ जाना चाहता हूं तेजी के साथ, वो ये कि हुजूर पाक ने भी अलर्ट किया था इस कबीले को लेकर। बहुत सारी हदीसें हमारे अहले सुन्नत भाइयों के पास भी, हमारे पास भी, जिसमें फरमाया था कि होशियार रहना कि बनी उमैया मेरे मेंबर पे ना आए, क्योंकि खतरा था इस कबीले से। ये इनके बारे में था कि मेजोरिटी ऑफ ये ट्राइब जो है, मेजोरिटी ऐसे हैं कि जिन पे आप एतबार नहीं कर सकते हैं। ये ट्राइबलिज्म ज्यादा है, मजहब से ज्यादा ट्राइबलिज्म है इनके अंदर, मजहब से ज्यादा वो बनी उमैया के झंडे को ऊंचा देखना चाहते हैं, ना इस्लाम के झंडे को, ना तौहीद के झंडे को, ना पैगंबर के झंडे को, लिहाजा ये डेंजर है। अब हुआ क्या, एक तो ये हुआ कि हुजूर पाक की वफात के बाद अबू सुफियान बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन इसके अंदर जो एक इस्लाम को लेकर और हुजूर पाक को लेकर एक जो कीना था, उसे निकालने के लिए वो मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल करता था। वन ऑफ देम इज द मोस्ट पॉपुलर, जिसको सारे मुसलमानों ने कोट किया, वो हजरत हमजा की कब्र पे आया। हजरत हमजा के शहीद करने वाले भी यही हैं। इसकी बीवी ने फिर उनके साथ जो ज्यादती की, जो दाइश की तरह जो है सीना चाक करके वगैरह वगैरह, जिगर खार इसीलिए कहा जाता है, हमजा की कब्र पे आके इसने जनाब हमजा की कब्र को लात मारना शुरू कर दिया और कहा कि हमजा, कहा कि कूम, उठो हमजा, देखो आप जरा देख लो कि ये जो कुरैश की और पूरे अरबों का जो इख्तदार की बागडोर है, वो आप किसके पास आ गई है, लौट के आ गई ना हमारे हाथ में। जब शाम के अंदर मसाइल पैदा हुए और माविया ने अलग एक पैरेलल स्टेट बनाना शुरू कर दिया, इस बिग इस्लामिक स्टेट के अंदर एक पैरेलल स्टेट वहां पे खड़ी कर दिया मौला अली के दौरे खिलाफत में, तो वो जो है उस वक्त उसने ये हरकत कर दी। अब जरा गौर से सुने, अब जो मैं चीज कोट कर रहा हूं माविया का, वो जो है हमारी मुस्लिम तमाम किताबों में मौजूद है। इब्ने अबिल हदीद मोतजली अहले सुन्नत आलिम दीन है, उसने भी इसको कोट किया है और बड़ी इसकी इंटरप्रिटेट किया है। इवन मौलाना मौदूदी साहब ने भी इसको पूरे वर्डिक जो है उसको कोट किए बगैर इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो अपनी किताब खिलाफत मुलुकियत में उस वो एड कर चुके हैं। और रिसेंटली बहुत सारे हमारे जो अहले सुन्नत स्कॉलर्स हैं, जो स्पीचेस करते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स पे, उन्होंने भी इनको इनको रेफर किया, रेफरेंस दिया है। एटलीस्ट इसका माविया तकरीर कर रहा है कूफे में, कूफा इज द हेडक्वार्टर ऑफ मौला अली अलैहि सलाम। कूफे में आया और वहां पर आकर कुछ जुमले कह रहा है, कहता है वल्लाहि खुदा की कसम, इन्नी मा कतलतुकुम लितुसल्लू, कह रहा मैंने तुम लोगों के साथ इसलिए जंग नहीं लड़ी थी कि तुम नमाजें पढ़ो, वला लितमू तसूमू, मैंने इसलिए जंग नहीं लड़ी कि तुम लोग रोजे रखना शुरू कर दो, बड़े रोजेदार बन जाओ, बड़े नमाजी बन जाओ, वला तहज्जू, बड़े हाजी बन जाओ, वला तुजक्कू, बड़े जकात देने वाले बन जाओ, इन्नकुम लतफअलून ज़ालिक, मुझे पता है ये तो तुम लोग करते रहते हो, ये मैटर ही नहीं करता मेरे लिए। कह रहा है इन्नमा कातलतुकुम, मेरी जंग जो असल थी ना तुम लोगों के साथ सफीन में, दीगर जगहों पर वगैरह वगैरह, मैं लड़ता रहा हूं तो असल में लिआतआमर अलैकुम, बाबा मैं अपनी हुक्मरानी को इस्टेब्लिश करना चाह रहा था, तुम नमाजें पढ़ो ना पढ़ो, रोजे रखो ना रखो, हज करो ना करो, जकातें दो ना दो, इट्स डजंट मैटर फॉर मी, मैं तो अपनी, मैंने अपनी हुकुमरानी को एस्टेब्लिश करना है बस, मजहबी गैर मजहबी कोई फर्क नहीं पड़ता, आज के जमान में बोले सेक्युलर नॉन सेक्युलर इट्स डजंट मैटर। इसीलिए अबू रेहान अल बेरूनी, नाम सुना है ना, साइंटिस्ट गुजरा है, साइंटिस्ट के अलावा मुहाद्दिस भी थे वो, अबू रेहान अल बेरूनी ने कोट किया है एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी को, जिसकी तरफ मुस्लिम स्कॉलर्स भी कम तवज्जो देते हैं, कहते हैं कि माविया इब्न सुफियान अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए दमिश्क में बुतों की मूर्तियां बनवाता था, और ये मूर्तियां थ्रू द सी या पोर्ट के जरिए कहाँ जाती थी, इंडिया में, और इंडिया से तीन चार चीजें आती थी, वन ऑफ द मसाले, सेकंड इज चमड़े, थर्ड इज बांस की लकड़ी जिसको खैजुरान बोलते हैं, और ये वही बांस की लकड़ी यजीद मरून के हाथ में थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सारे अकदस के साथ गुस्ताखी कर रहा था। तारीख के अंदर जो लफ्ज आए हैं ना, वाला यदि खचबुम मिन खैजुरान, और उस मलून के हाथ में बांस की लकड़ी की एक स्टिक थी, पूरे अरब जजीरे में बांस कहीं उगता ही नहीं है, तो ये बांस आता कहां से था, इंडिया से था। यानी एक मुसलमान हुक्मरान जिसका दावा है कि मैं रसूल का जानशीन हूं, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, वो मूर्तियां बनवाकर बेचता है और बदले में चमड़े और बांस की लकड़ियां और जो है दीगर मसाले और दीगर इस तरह की ऊन वगैरह ये चीजें वहां से, इंडिया से मंगाता है। क्यों? उसको, वो उसने रियासत और सियासत और मजहब को तो अलग चीजों में डाल दिया है। खुद कह रहा है मेरे, मुझे मैटर नहीं करता तुम लोग दीनदार हो या बेदीन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी स्टेट को मजबूत बनाना है, बाकी तुम लोग जो करते करो। अब सवाल ये है, अल्लामा तबाताबाई भी इस को कोट करते हैं, इसी वर्ड्स को जो माविया के हैं, वो यही फरमाते हैं। अल्लामा तबाताबाई कहते हैं, माविया इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो सियासत को मजहब से अलग कर रहे हैं और मजहबी जाबितों की जमानत अब नहीं देने वाले, यानी कोई गारंटी नहीं है, अपनी हुकूमत को जिंदा रखने के लिए तमाम तर कुवत का वो इस्तेमाल करेंगे। फिर फरमाते हैं, यकीन अलवाजे है कि ऐसी हुकूमत बादशाहत है, न कि खिलाफत और पैगंबर खुदा की जानशीनी। अजीजो, बात यहां पर आई है तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम के नूरानी एक जुमले की तरफ जाते हैं। इसीलिए बार बार आप देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहि सलाम बार बार इन चीजों को याद दिलाते हैं कि रियासत, सियासत और मजहब में जुदाई नहीं है, हुक्मरान वही है जो आपकी मजहबी रहनुमाई भी देता है, आपकी सियासी क्यादत भी करता है, आपकी रियासत के उमूर को भी चलाता है। मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमामत इलाही जो मनसब है खुदा की तरफ से, उसकी डिफिनेशन देते हुए कहते हैं फले उम्री, फले उम्री का जुमला कहता है, मुझे अपनी जान की कसम, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं, मल इमाम इल्ला हाकिमल किताब बल कायमुल बिल किस्त अद्दाइनु बिदीन अल हक अल हाबिसु नफ्सहु अला जातिल्लाह। कहता है खुदा की कसम इमाम इसके अलावा कौन हो सकता है जो कहता है हाकिम बिल किताब, अल्लाह की किताब के आकाम के मुताबिक सोसाइटी के अंदर निजाम तश्कील दे और हुक्मरानी करे, अदालत और इंसाफ इलाही कायम करे, सच्ची दीनी तालीमात को बयान करे, खुद को खुदा के लिए वक्फ करे। मतलब क्या है, यानी जो कुछ खुदा का हुक्म है उसे बजा लाए। यह है इस्लामी कंसेप्ट हुक्मरानी का, किसके मुकाबले में, जो सेकुलर नजरिया आज भी हमारे पास मौजूद है। हम आएंगे इंशाल्लाह ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आएंगे कि असर गैबत तक आएंगे, उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन फाउंडेशन के तौर पे बिगिनिंग ऑफ इस्लाम यानी हुजूर पाक की वफात के तकरीबन 50 ईयर्स के बाद वाकई करबला हुआ है, 50 साल वाकई करबला हो गया यानी यजीद। तो इस 50 साल से भी कम टाइम में रियासत, सियासत और कयादत और मजहब में जुदाई का नजरिया इस मुसलमानों के दरमियान आ गया फौरी तौर पर। वो जबकि मदीने की एक नबवी रियासत के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे, लोग था ना, गुजार रहे थे ना, ज्यादा टाइम तो नहीं गुजरा है ना, टोटल आइडियोलॉजी बदलने की कोशिश की और बदलने लग गए हैं। और फिर यजीद के दौर में क्या हुआ होगा अंदाजा लगा सकते हैं। बाप ने अगर दीन, रियासत और सियासत में जुदाई का नजरिया दे दिया तो बेटे ने तो उससे 2 कदम आगे चला गया बेटा। और इसीलिए जो है कुरान मजीद कहता है ना कि अगर इमाम हुसैन जैसी हस्तियां रियासत, सियासत और लोगों के उमूर की अगर बागडोर संभालेंगे तो कुरान कहता है अल्लदीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्द अकामु सलात व अताउ ज़कात व आमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, अगर उन लोगों को हम जमीन में ताकत और कुव्वत दे दें तो वो सबसे पहला काम ये है कि खुदा की बंदगी और इबादत को इस्टेब्लिश करेंगे और खुदा की इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो सिस्टम अपनाएंगे जो खुदा ने दिया है, अच्छाई के हमेशा दावत देने वाले होंगे, स्टेट की तरफ से अच्छाई की दावत होगी, बुराई स्टेट रोकेगी हमेशा, हर किस्म की बुराइयां, अखलाकी बुराइयां, अकीदती बुराइयां, सोसाइटी सोशल बुराइयां, सिर्फ क्राइम नहीं बुराई रोकेगी, क्राइम और बुराई दो अलग चीजें हैं, आज की सोसाइटी में जराइम रोकते हैं बुराई नहीं रोकते, है ना, इन सोसाइटीज के अंदर ये खुद को सिविलाइज कहते हैं, लेकिन यहाँ क्राइम रोका जाता है, बुराइयों को प्रमोट किया जाता है, खुदा की हाकिमियत होगी तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए पता नहीं क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कल से, और ये खुद मेरे दिमाग में अल्फाज आ रहे हैं, हम बार बार फख्र करते हैं, मेडल देते हैं अपने अइम्मा को, खुदा ने दिया है ये कि ए हमारे इमाम आप हैं जिन्होंने नमाज को एस्टेब्लिश किया, आप हैं जिन्होंने अच्छाइयों की दावत दी, बुराइयों से रोका। इस्लाम के इकोनॉमिकल सिस्टम जकात को आपने एस्टेब्लिश किया। आप थे जो माशरे की बेहतरी के लिए उठे थे, यहां तक कि इसके लिए आपने हर चीज कुर्बान कर दी, और इस कुर्बानी के देने में आपने किसी भी तरीका से कोई जो है झिझक नहीं दिखाई, और आपके चाहने वाले भी आपके रास्ते पर सच्चे थे जिन्होंने ये कुर्बानियां दे दी। अभी तो समझ में नहीं आता, कल भी बेन सलातेन मैंने अर्ज किया कि नोहे में भी एक जुमला था कि नहीं मालूम कि अइमा और नमाज और इन चीजों का कितना गहरा ताल्लुक, जगह जगह पे साथ नजर आते हैं। मैंने अर्ज किया था कल भी कि करबला में चाहते तो ये नमाज दो दो एक एक होकर खेमों के अंदर जाके, खेमों के पीछे जाके, खंदक थी वहां पे पढ़ सकते थे, और चाहते तो ये जमात खेमों के अंदर या कहे महफूज जगह में जो निस्बी तौर पे महफूज वहां पढ़ सकते थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, ओपन एयर में होगी, सबके सामने होगी, दुश्मन तीर मारता है मारे। अजीब है, नमाज की हिफाजत करते हुए, नमाज जमात को बचाते हुए 27 से ज्यादा लोग शहीद, कितनी तादाद है, कितनी आर्मी है इमाम हुसैन के पास। एक अच्छा जो सिपा सालार होता है, किसी भी हाई कमांड होती है फौज की, उसकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होती है। वो अपने कम तादाद में फौज रखता हो तो अपने फौजियों को इजीली शिकार बनने नहीं देता, बड़े किसी मकसद के अलावा फौजियों की जाने कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए आप देखते हैं इमाम है, वो देखिए मसाइब हैं, लेकिन मसाइब के अंदर मारिफ भी हैं, मारिफत की बातें हैं, समझने की बातें। मसाइब पढ़ते हैं तो मारिफत और समझने की बातें रह जाती हैं, इसलिए मैं चाहता हूं मसाइब को इस तरह पढ़े जाए कि वो बातें भी हाईलाइट हो जाएं। देखें बहुत से ऐसे शख्सियात शुरू में आती हैं कि वो पहले चले जाएं मैदान जंग में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इजाजत नहीं देते। हमारे यहाँ उसको हमने जज्बाती बना दिया, किसी को कहा मेरा बेटा है इसलिए ना जाए, किसी को कहा भाई है, इमाम हुसैन ऐसे नहीं थे। बेटे ने इजाजत मांगी तो 1 मिनट के लिए रुके नहीं, थोड़ी देर के मैंने कहा बेटा मत जाओ, बाद में जाओ, कहा इजाजत है मेरी तरफ से चले जाओ। हजरत अली अकबर का जनाजा खुद उठाकर नहीं लाए, हजरत जैनब सलाम अलैहा दौड़ के, क्योंकि जनाजे में आई बीबी। उलमा कहते हैं कि शायद बीबी असल में इमाम की तवज्जो को अली अकबर की लाश से बटाना चाहती थी, इसलिए खेमे से बाहर आई। वगरना बार बार इमाम हुसैन अली सलाम ये जुमले बीबियों को कह चुके थे, देखें जब तक हम जिंदा हैं आपने खेमे से बाहर नहीं आना, दुश्मन बड़ा पलीद और खबीस है, इससे कोई भी चीज बईद नहीं है, ये कोई भी हरकत कर सकता है, और लिहाजा जो है हम, मैं नहीं चाहूंगा मेरी जिंदगी में आप खेमे से बाहर आ जाएं। लेकिन कुछ जगहों पर बीवी खुद बाहर आई है हजरत जैनब सलाम अलैहा, बावजूद इसके कि इमाम ने मना किया है। इमाम ऐसे जुमले कहते थे कि ला तनकिसु मिन कद्रिकुम, ऐसी हरकत कोई ना करना बीवियो जिससे तुम्हारी कद्र मंजिलत में कमी वाकई हो जाए, कोई ऐसी हरकत ना करना। औरत है जाहिर है जज्बाती भी हो सकती है, बच्चे हैं जाहिर है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, तो ऐसी कोई हरकत तुम में से ना हो जाए जिससे जो ये जो कुर्बानी की अजमत है ये अजमत में कोई कमी वाकई हो जाए। तो कहते ला तनकसु मिन कद्रिकुम ला ताती बि हरकतिन, कोई ऐसी चीज ना करना कि तुम्हारी कद्र मंजिलत कम हो जाए। उसके बावजूद बीबी निकलती है बाहर, जब हजरत अली अकबर शहीद होते हैं आवाज देते हैं कि बाबा जान मेरी खबर लो, रेगिस्तान करबला में हजरत अली अकबर हैं, सीने में बर्छी पेवस्त है, वो जो बर्छी कहते हैं वो नेजा था, नेजा था जो जिसका ऊपर का हिस्सा टूट गया था, अनी जो है कल्बे हजरत अली अकबर में फंस गई थी, तो ये टूटा हुआ नेजा था जिसको कहते हैं कि बर्छी फंसी थी, वो ये था असल में ना कि तीर कोई आके लगा था, नेजा लगा हुआ था हजरत अली अकबर को, जो रिवायात के अंदर है। बहरहाल उसमें इमाम आले मकाम दौड़ते हुए जाते हैं, बाप है जाहिर है काफी एज है, जवान बेटा है, इंसानी जज्बात इमाम में भी मौजूद हैं, सब्र के पहाड़ हैं, सब्र के इमाम हैं, लेकिन इंसानी जो जज्बात हैं वो इमाम के अंदर भी हैं, उसका होना तबीयी तौर पर इमामत के जरूरियात में से हैं। ऐसे मौके में सानिया जहरा जैनब कुबरा ये अकीले बनी हाशिम है, जहन रखे, बनी हाशिम की आकिल तरीन खातून है, समझदार तरीन खातून है, नासमझी के काम नहीं करती, जज्बात में बहकर काम नहीं करती है। जिनाब सानिया जारा गम मुसीबत के पहाड़ भी टूटे तो उस आलम में भी नासमझी वाली हरकतें नहीं करती हैं, नऊज़ु बिल्ला व नस्तजीरु बिल्ला। तो बीबी अगर खेमे से निकली है तो इसके पीछे भी कोई समझदारी की बात है, कोई आकिलाना बात है। क्यों? عقیلۂ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کی عاقل ترین خاتون، عالمہ یا غیر معلمہ ہے. امام فرماتے ہیں معصوم نے یہ ٹائٹل دیا ہے کہ آپ ایسی معلمہ ہیں جس کی تعلیم خدا نے دیا ہے براہ راست، آپ کا معلم دنیا میں کوئی نہیں ہے، معصوم نے دیا ہے خدا نے. فہمت غیر مفاہمہ، فرماتی ہیں کہ آپ اتنی سمجھدار خاتون ہیں کہ یہ سمجھداری تجربے سے حاصل نہیں کی آسانی زہرا نے. یہ فرمانا چاہتے ہیں یہ من اللہ ہے، من لدن ہے، خدا کی طرف سے یہ عقلانیت و سمجھداری عطا کی. اتنی با عظمت بی بی جذبات کے رو میں بہہ کر کہ بانجا بتیجا شہید ہو گیا، شبیہ پیغمبر شہید، تو خیمے سے باہر نہیں آتی کہ امام نے منع کیا خیمے سے باہر نہیں. اگر خیمے سے باہر آئی ہے تو یقیناً کوئی سمجھداری کی بات ہے، کوئی عقل کی بات ہے، کوئی دین کی بات ہے. تو علماء کہتے ہیں وہ سمجھداری کی بات یہ تھی، بی بی جانتی تھی کہ بزرگ عمر باپ جوان بیٹے کی لاش میں جائے گا تو جو کیفیت اس کی ہوگی، اس کیفیت کو پیش نظر رکھ کر بی بی نے امام کی توجہ بٹانے کے لیے یہ حرکت کی. بی بی خیمے سے نکلی، دوڑتے ہوئے مقتلگاہ کی طرف آئی، حضرت علی اکبر کے جنازے کی طرف دوڑی، امام کی نگاہ بی بی پر پڑی، اکبر کی طرف توجہ امام کی ختم ہو گئی، بی بی کی طرف توجہ دے دی اور کہا اختہ یا زینب، کہا تم میرے ہوتے ہوئے خیمے سے باہر آئی ہو، کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، خیمے کی طرف لوٹ کے چلی جاؤ. اور یہاں پر امام عالی مقام کا وہ جملے ہیں، اصحاب بھی دوڑ کر آئے تھے اس دوران میں، امام نے اصحاب کی طرف مڑ کر کہا احملونا شاخی کا، کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کے جنازے کو اٹھا کے خیمگاہ کی طرف لے کے آؤ. امام نے خود جو ہے اپنے لخت جگر کا جنازہ نہیں اٹھایا. لہذا امام کی امامت میں سب برابر تھے. امام رشتہ داروں کے بیس پر کسی کو ترجیح دے دیں، کسی کو کم کریں، ایسا نہیں تھا، سب عزیز تھے. جب کوئی اجازت مانگتا تھا تو امام اجازت نہیں دیتے تھے، اس لیے نہیں دیتے تھے کہ اس کی ضرورت تھی امام کو. ایک ایسے عالم میں ایسی حکمت عملی رخ اختیار کرنے والے میرے امام نے جب نماز جماعت کے بارے میں بات کی گئی تو کہا کہ خطرہ تو ہے، دشمن تیر چلائے گا، اور یہ حکمت عملی غیر مناسب ہے بظاہر، اس لیے کہ سارے ہمارے فوجی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے جماعت کی صفوں میں، دشمن کو نشانہ بنانا آسان ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ بے شک دشمن نشانہ بنائے، بے شک ہم دشمن کے خطرے میں ڈائریکٹلی چلے جاتے ہیں، لیکن کہا کیونکہ ہم کربلا آئے ہیں کہ نماز کو ہم اسٹیبلش کریں، کیونکہ ہم کربلا آئے ہیں کہ لوگ اس دنیا کو دکھائیں کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کے لیے ہم اپنے قلیل سی جو لشکر ہے اس کے اندر بھی کمی واقع ہوتی ہے تو وہ ہمیں قبول ہے. نماز خوف پڑھنے کے لیے امام نے صفیں درست کر دی. کچھ اصحاب چاہتے تھے کہ امام کی نماز کی جو ہے سیکیورٹی کریں، حفاظت کریں. ان میں ایک شخص جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک ایسی شخصیت ہے، آپ دیکھیں مصائب سنتے رہتے ہیں، تھوڑی سی ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، دیکھیں کہ یہ کربلا والوں کو اتنا بڑا اعزاز کیسے ملا ہے. یہ ہے سعید ابن عبداللہ حنفی. یہ بیچارہ اتنی با عظمت شخصیت ہے، اتنی عظیم. ہم دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم سے کوئی اچھا کام ہو جائے نا، تھوڑا سا کوئی خدمت ہم کریں نا، ہم اتراتے پھرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم نے نعوذ باللہ احسان کر دیا، دین کو پریشان کر دیا، امام زمانہ پہ نعوذ باللہ احسان کر دیا، خدا پہ احسان کر دیا. اب ذرا اس شخصیت کو دیکھیں، حالات پر خطر ہیں، جو بھی امام کی سپورٹ میں آتا ہے، مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ جیل جاتا ہے، یا وہ قتل ہو جاتا ہے، یا بدترین ٹارچر کا شکار ہوتا ہے، اس کے گھر برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کی فیملی کو برباد کر دیا جاتا ہے. ان حالات میں یہ سعید ابن عبداللہ حنفی اہل کوفہ کے خطوط لے کے مدینہ منورہ جاتا ہے، جب امام ابھی سفر ہی شروع نہیں کر چکے تھے، انکار بیعت کر چکے تھے، سفر شروع نہیں کیا تھا، خطوط لے کے مدینہ میں پہنچتا ہے. یہ خطوط لا کے امام عالی مقام کے خدمت میں دیتا ہے. امام جواب دیتے ہیں ان خطوں کا، جواب لے کر 2 دن کے اندر ہی واپس چلا جاتا ہے. 8 فرسک بنتے ہیں، یعنی 8 فرسک اچھا خاصا تقریباً کلومیٹر بنتے ہیں، 300 سے 400 کلومیٹر سے اوپر بن جاتا ہے. یہ واپس کوفہ جاتا ہے بیچارہ، دمشق کہاں کوفہ کہاں، وہ صحرائی راستہ ہے، کوئی راستے میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں اور ہوٹلز تو نہیں ہے اس زمانے میں، گھوڑے میں واپس چلا جاتا ہے. امام ہجرت کرتے ہیں وہاں سے، مدینے کو چھوڑ کر مکہ پہنچتے ہیں، جہاں تقریباً آلموسٹ 4 سے 4.5 مہینے امام نے قیام فرمایا. وہاں پہ یہ پھر خطوط لے کے آتا ہے امام کے لیے، دوسرے اگلے خطوط کی کھیپ، ہزاروں لوگوں نے سائن کیا جس کے اوپر، ان میں سے ایک عمر سعد بھی ہے جس نے سائن کیا ہے کہ میرے امام جلدی آ جاؤ کوفہ، لیس لنا امامن غیرک الاجل یا مولا، یہ عمر سعد بھی ہے جس نے سائن کیا ہے، یہ عمر سعد جنگ صفین میں بھی تھا. इब्ने जियाद का बाप मौला अली का गवर्नर था, ये इब्ने जियाद मलून, इसका जो बाप था वो मौला अली का गवर्नर रहा है मौला अली की हुकूमत में, और बसरे और कूफे के मजाफाती इलाके की गवर्नरी उसके पास थी मौला अली के दौर में। बहरहाल ये करेक्टर जो है ना, पहचानने की जरूरत है कि ये कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। एक मौला अली के गवर्नर का बेटा है, इब्ने उमर इब्ने साद, वो जंग सफीन का मुजाहिद है जो माविया के खिलाफ जंग लड़ रहा था, शिमर का भी यही है, जंग सफीन का मुजाहिद था। खलासा, ये मक्के में आता है सईद इब्ने अब्दुल्ला, मक्के में आके खतूत दे देता है इमाम की खिदमत में, इमाम खत का जवाब देते हैं और फिर हजरत मुस्लिम को अपना नुमाइंदा बनाते हैं। नुमाइंदा बनाकर सईद को कहते हैं, सईद तुम मुस्लिम के साथ वापस कूफा जाओ। ये बेचारा फिर वापस कूफा आता है, कूफे में हजरत मुस्लिम को पहुंचाता है, पहुंचाने के बाद इससे रहा नहीं जाता, कहते यार मेरा इमाम मक्के में अकेला है। देखें एक सच्चा आशिक हो ना, मैंने कहता मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब इमाम जाने तो उसका काम जाने, नहीं ऐसा नहीं है। बनी हाशिम के बहुत से लोग इमाम के साथ नहीं आए, आने वालों के लिए रास्ते खुले थे, ना आने वालों के लिए बहाने भी ज्यादा थे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ की बात कर रहा हूं। मक्के वालों में, मक्के में तो बहुत से लोग थे, बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात थी, वो नहीं आए इमाम के साथ। हत्ता कूफे के रास्ते में बड़े लोग मिले जो कूफा शहर के हालात छोड़ के भाग रहे थे, इमाम के साथ नहीं दिया, इमाम के मानने वाले थे। टॉप ऑफ द लिस्ट फरजदक शायर है, जिसने सारे कूफे की इंटरप्रिटेट किया, मंजरकशी की एनालाइज करके इमाम को बताया था, और भी लोग थे। मक्के में ये रहा नहीं जाता, इससे कूफे में बैठता नहीं है, कहता मेरे इमाम मक्के में अकेला है, फैमिलीज के साथ हैं, खानवादे हैं, बच्चे हैं, खवातीन इस्मत व तहारत है। वापस घोड़ा दौड़ाते हुए बेचारा मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचता है कूफे से। आज देख रहे हैं फासला, कूफा कहाँ मक्का कहाँ, घोड़े में आना है। फिर देखते हैं कि इमाम मक्के को छोड़कर करबला की तरफ निकल रहे हैं, इमाम के साथ होते हैं। तकरीबन इसने हमारे आज के हिसाब से तो 1500 किलोमीटर कंटिन्यूसली ये बंदा 4 से 6 महीने ट्रेवल कर रहा था घोड़े के अंदर, और न थका है न खतरा है, खतरे से डर रहा है कि रास्ते में मारा जाऊंगा, ये पकड़ के मुझे मारेंगे, इनको पता चलेगा मैं पैगाम लेके जा रहा हूं। इतना काफी था कि पता चले इमाम हुसैन के लिए खत लेके जा रहा है, बस इतना काफी था उस दुश्मन के लिए, इसको मार देते, जिस बहुत सों को मार दिया। ये आदमी फिर वापस पहुंचता है इमाम के साथ करबला, रास्ते में इमाम वो सारे जुमले कहते हैं, ये काफिला मौत की तरफ जा रहा है, मुनादी निदा दे रहा है, हजरत अली अकबर के जुमले सुनते हैं, इज़न ला नुबाली बिल मौत, ये सारा पता, इसको सब सिचुएशन क्लियर होती है कि यहाँ कोई हुक्मरानी नहीं है, यहाँ कोई ओहदे की तकसीम नहीं होने वाली, यहाँ कोई माल गनीमत नहीं है, यहाँ मुसीबत ही मुसीबत है, यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ तादाद में कम है, दुश्मन ज्यादा है, दुश्मन के तीरों और तलवारों का हम सामना करेंगे और मारे जाएंगे। सईद इब्ने अब्दुल्ला को क्लियरली पता चलता है, फिर भी इमाम के साथ खड़ा रहता है। अच्छा, अभी आशुरा की सुबह जब इमाम ने फरमाया कि हम नमाज जमात बाहर पढ़ेंगे मैदान में ओपन एयर में, और अब यहां पर जाहिर है कि कुछ लोगों को प्रोटेक्शन देना होगा, सिक्योरिटी करना होगा ना, बहुत से लोग होंगे, बड़े बड़े नामवर असहाब हैं, मुस्लिम इब्न उसजा जैसे, अबी बिन मजाहिर जैसे, वगैरह वगैरह। उस वक्त सईद इब्ने अब्दुल्ला बड़ी आजिजी और इनकिसारी के साथ इमाम के सामने आते हैं, नमाज की तैयारी हो रही है, इमाम के पास पहुंचते हैं, गर्दन झुका के कहते हैं यबन रसूलिल्लाह, आप इतजाक करके थे, क्या आपको याद है ना मैं मदीने में पहली बार आया था आपके खतूत लेकर। फरमाया हाँ सईद मुझे याद है, बारकल्ला भी, खुदा तुम्हें तौफीक दे, जजाए खैर दे, तुमने नेक काम किया, अहले कूफा की दावत पहुंचा दी मुझे। कहा नहीं मौला, उसके बाद मैं दोबारा मक्का आया था। कहते हाँ सईद, कर मौला आपने मुझे मुस्लिम के साथ भेजा। कहते सईद कहना क्या चाहते हो, ये सब क्यों याद दिला रहे हो। कहते देखे मौला मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, ना मैं कोई नामवर सहाबी हूं, ना मैं कोई नामवर जो है कोई बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार आदमी हूं, ना मैंने कोई इस्लाम के लिए बड़ी खिदमात अंजाम दी है, ना मेरी खानदान ने दिया है, तो मुझे पता है अभी देखें एक सआदत की घड़ी आने वाली है, अब ये किसके नसीब में होती है मुझे नहीं पता, अगर मौला आप समझते हैं कि मैंने कोई थोड़ी सी खिदमत की है तो इसके बदले में मुझे एक इनाम चाहिए आपसे। कह रहे सईद आगे बढ़ते हैं, इमाम सीने से लगाते हैं, कहते सईद इस गुरबत के आलम में क्या मांग रहे हो, कहते कौन सा इनाम तुम्हें चाहिए, कहता एक सआदत है मौला मुझे दे देंगे आप अगर मैं हकदार हो तो। कहते हैं सईद बताओ तुम्हें क्या, कहता देखे मौला आप नमाज के लिए खड़े होंगे ना, दुश्मन आप पे तीर मारने वाले हैं ना, तो आपको आपके आगे कौन खड़ा होगा जो तीरों से आपको बचाए? कहते मैं चाहता हूं मैं खड़ा हो जाऊं आप, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, अच्छे साहब ही हैं, शायद ये इतनी बड़ी सआदत उनके नसीब में हो, वो इसके लायक हो, लेकिन अगर मेरी कोई खिदमत है, मेरे कोई थोड़ी सी खिदमत की है, तो मुझे एजाज में बदले में मौला इजाजत दो, मैं आपके ताहिर अतहर जिस्म की तरफ दुश्मन के आने वाले तीरों से अपने जिस्म पे खा के बचा लूं। अजीजो ये है अजमत, ये है मारिफत, ये है शिनाख्त, क्या चीज मांग रहा है? अजीजो कहते हैं कि नमाज शुरू हो गई, इधर तकबीर पड़ी, सईद इमाम के आगे चौकन्ना है, होशियार है, पांव जमीन में चट्टान की तरह गाड़ चुके हैं, दाएं तरफ देखते हैं, बाएं तरफ देखते हैं, खदा न कर रहा नवासे रसूल जहरा के लाल की तरफ कोई तीर चली जाए, और सईद खड़ा देखता रहे, तीरों की बारिश होती है, हर तीर को सईद जो है आगे बढ़ बढ़ के अपने जिस्म पे रोकता है, किसी को हाथ से रोकता है, किसी को सीने से रोकता है, किसी को पाँव आगे करके रोकता है। नमाज की दूसरी और आखिरी रकात शुरू होती है, शहीद का जिस्म तीरों से छिन्नी छिन्नी हो चुका है। रावी कहता है इधर नमाज में सलाम फेरी जा रही थी कि उधर जो है खबीस माहिर निशानेबाज ने तीर फेंका, शहीद ने अपना चेहरा आगे कर दिया, शहीद का हाथ हरकत नहीं कर रहे थे, शहीद की आंख में वो तीर लगा, इधर नमाज खत्म हो गई, उधर सईद जमीन पे चले गए आगोशे जमीन पे गिरने से पहले है, नवाज़े रसूल आगे बढ़े, सईद के सर को अपनी गोद में लिया, सईद की आंख से खून हटा दिया, साफ किया, सईद ने मुश्किल से आंख से अपने आका व मौला की ज़ियारत की, और उसके बाद कहने लगे अबा भाई तू ही अपना रसूल, अबा भाई तू ही अपना जहरा, कहो जहरा के लाल रसूल खुदा के नवाजे, मैं वफादारी कर सका या नहीं कर सका? आगे से इमाम ने जवाब दिया अंत वफी फिर दुनिया वाला आखिरा अंत मेरा या नहीं फिर जन्नत, सईद खुदा तुम्हें दुनिया व आखरत में वफादारी के तमगे दे दे, सईद मेरे हाथों के साथ चले जाओ, मैं तुम्हें बहेश में पहुंचा रहा हूँ। अय्यामुन कलब यनकलिबून वलाक़िबतु लिल मुत्तकीन अहले तक्वा इबल यकीन। परवरदिगारा